पृष्ठ संख्या 239। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 25 वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों ने साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति प्राप्त कर ली। शेष बचे अधिकांश देश भी अगले कुछ वर्षों में स्वतंत्र हो गए। 1995 में विश्व के विभिन्न भागों में कुछ एक छोटे इलाकों को छोड़कर प्रत्येक देश दूसरे देश के सीधे राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका की एक ऐसा बड़ा देश था जो हाल के वर्षों तक मूलभूत अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में नाकामयाब रहा था। यह देश इस अर्थ में स्वतंत्र था, इस पर किसी दूसरे देश का शासन नहीं था। वास्तव में इसे औपचारिक रूप से एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, किंतु दक्षिण अफ्रीका पर गोरे अल्पसंख्यकों का शासन था और वहाँ की 80% जनता को नस्ली आधार पर देश की राज्य व्यवस्था में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। किंतु मई 1994 के आरंभ में अंततः नस्ल के आधार पर दमन की प्रणाली समाप्त हो गई और वहाँ एक गैर नस्लवादी लोकतांत्रिक सरकार सत्तारूढ़ हुई। एक दूसरा देश जिस पर कुछ भिन्न प्रकार का दमनकारी शासन लागू था वह फिलिस्तीन था। इस देश में अधिकतर ऐसे लोगों ने जो दुनिया के दूसरे देशों से आए थे इसराइल नाम के एक यहूदी राज्य की स्थापना कर ली थी। वहाँ अपना शासन कायम रखने के बाद उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को भगा दिया और इसराइल द्वारा अधिकृत प्रदेशों में जो फिलिस्तीनी रह गए उन पर औपनिवेशिक प्रकार का शासन थोप दिया। 1990 वाले दशक के मध्य में कुछ एक ऐसे कदमों पर सहमति हुई जिनसे एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की संभावना उत्पन्न हो गई। तथापि 1990 के दशक में जागी आशाएं छिन्न भिन्न हो गई। दक्षिण अफ्रीका में गोरों का शासन समाप्त हो जाने और फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो जाने के साथ ही लगभग पूरा विश्व स्वतंत्र हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के दौरान एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलनों में तेजी आई। इन राष्ट्रवादी आंदोलनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में तथा धुरी शक्तियों को पराजित करने में विशेष भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध को सर्वत्र स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई माना गया था। इससे उन देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला था जो फांसीवादी आक्रमणों से लड़ने वाली मित्र शक्तियों के औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। यहाँ तक कि ऐसे औपनिवेशिक देशों में भी स्वतंत्रता और आज़ादी के आंदोलन हुए जो धुरी शक्तियों के अधीन थे। उदाहरण के लिए एशिया में भारत पर ब्रिटिश शासन जारी था, किंतु अन्य अनेक देशों में जापानियों ने अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डच उपनिवेशों को उखाड़ फेंका था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में औपचारिक रूप में विसी फ्रांस के नियंत्रण में थे। इन सभी देशों में युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होने लगे और सभी देशों में साम्राज्यवाद के विरोध में जोरदार लहर उठी। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों पर फिर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, किंतु उनका प्रबल प्रतिरोध हुआ और कई मामलों में उन्हें सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवादी देशों और राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच चल रहे कुछ संघर्ष शीत युद्ध के संघर्ष में बदल गए, जिनमें संयुक्त राज्य साम्राज्यवादी देशों के समर्थन में खड़ा हो गया। अफ्रीका के अनेक भागों में जहां दोनों युद्धों के बीच की अवधि में राष्ट्रवाद पनपने लगा था, युद्ध के बाद शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। साम्राज्यवाद का कमजोर होना। युद्ध के बाद साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध ने फांसीवाद का उन्मूलन करने के साथ साथ यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी कमजोर कर दिया। इनमें से कई देश स्वयं ही फांसीवादी अतिक्रमण का शिकार हो गए। उदाहरण के लिए यूरोप के तीन साम्राज्यवादी देश फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, नीदरलैंड स्वयं ही कुछ के दौरान जर्मनी के कब्जे में चले गए। युद्ध के दौरान उनकी सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी युद्ध के कारण जर्जर हो चुकी थी। इनमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह गया था। उनके स्थान पर अब संयुक्त राज्य और सोवियत संघ बड़ी शक्तियां थे। साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति छिन हुई। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते रहने की स्थिति में नहीं थे। जिन देशों ने लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ लड़ी उनके सामने विकट घरेलू समस्याएं खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए हिंद चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाइयों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए, जिनसे एक बार तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ गई। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाइयाँ पुर्तगाली तानाशाही के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। बदले हुए राजनीतिक वातावरण में अब साम्राज्यवाद को श्रेष्ठ सभ्यता की निशानी नहीं माना जाता था। इसके विपरीत अब हर जगह, यहाँ तक कि स्वयं उपनिवेशवादी देशों में भी साम्राज्यवाद को पशुता, अन्याय और शोषण का पर्याय माना जाने लगा था। 1945 के बाद विश्व में आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग जैसे विचारों का बोलबाला कायम हुआ। यहाँ तक कि स्वयं साम्राज्यवादी देशों में भी औपनिवेशिक शासन कायम रखने के प्रयत्न लोकप्रिय नहीं रहे। अधिकांश फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस द्वारा लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाइयों का विरोध किया। 1956 में जब ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। अब साम्राज्यवादियों ने औपनिवेशिक देशों में सत्ता न छोड़ने का नया बहाना बनाया। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उपनिवेशों की जनता को स्वतंत्रता की दहलीज पर शांतिपूर्ण तरीके से कदम रखने के लिए तैयार करने, भाई भाई की हत्या करने वाली और कबीलाई लड़ाइयों को रोकने, आतंकवाद और साम्यवाद का प्रतिरोध करने तथा उपनिवेशों की जनता को लोकतंत्र का प्रशिक्षण देने आदि के लिए उन पर अपना नियंत्रण रखना जरूरी था। बहुत से विद्वानों का यह मत है कि उपनिवेशों पर अपना कब्जा बनाए रखने की लागत का भार उठाना उपनिवेशवादी देशों के लिए कठिन होता जा रहा था। उनका यह भी कहना है कि किसी देश के आर्थिक शोषण के लिए अब उस पर सीधे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना जरूरी नहीं था। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों की एकजुटता। स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती देने वाले एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच एकजुटता बढ़ने लगी थी। प्रत्येक देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने दूसरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। उदाहरण के लिए जब 1946 में इंडोनेशिया में डच शासन और हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहायता देने के लिए भारत की ब्रिटिश हुकूमत उन दोनों में भारतीय सैनिकों को भेज रही थी, तो ऐसे समय में भारत में इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशिया और हिंद चीन की स्वतंत्रता के प्रति अपना उत्साहपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। जैसे जैसे एक के बाद एक देश को स्वतंत्रता मिलती गई, वैसे वैसे इस एकजुटता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता था तो वह दूसरे देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय सहायता देने लगता था। नव स्वतंत्र देशों ने राष्ट्रमंडल के मंच का और उससे भी कहीं अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का उन दोनों के हितों को समर्थन देने के लिए प्रयोग किया जो अब भी विदेशी शासन के अधीन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में उपनिवेशवाद विरोध तथा साम्राज्यवाद विरोध शामिल थे। उसने उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों को समर्थन देकर अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए आश्चर्य नहीं कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जन संगठन साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन स्वापो, जिसने नामीबिया में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था। वह 1990 में इस देश के आज़ाद होने से बहुत पहले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्ण सदस्य बन चुका था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO 1976 में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्ण सदस्य बन गया था। अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1963 में उन्होंने अफ्रीका एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अफ्रीका से हर प्रकार के उपनिवेशवाद को मिटाना था। स्वतंत्रता आंदोलन को सोवियत संघ तथा अन्य सभी समाजवादी देशों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली एक ऐसी प्रमुख शक्ति बन रहा जो साम्राज्यवाद को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हुई। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और मानवाधिकारों की विश्वजनीय घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही उपनिवेशों के मसले की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाले भूतपूर्व उपनिवेशों की संख्या बढ़ी, त्यों-त्यों उपनिवेशवाद को मिटाने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ स्वतंत्रता प्राप्त करने में उपनिवेशों का मार्ग प्रशस्त करने में उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगा। नामीबिया की स्वतंत्रता में भी उसने निर्णायक भूमिका निभाई। भारत की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों में एक देश भारत भी था। यद्यपि ब्रिटिश शासक इसके दो टुकड़े करने में कामयाब हुए थे, तथापि भारत की स्वतंत्रता ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। आज़ादी से पहले ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का संगठन करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बहुत से एशियाई देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चुके थे। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक था कि विश्व पटल पर एशिया का एक नई शक्ति के रूप में उदय हुआ है। स्वतंत्र भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी देशों के लिए शक्ति का स्रोत बन गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्वतंत्रता 1948 के आरंभ में 4 जनवरी को वर्मा अब म्यांमार और 4 फरवरी को सिलोन अब श्रीलंका स्वतंत्र हो गए। मलाया, जिस पर 1945 में जापानियों की हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने दोबारा कब्जा कर लिया था, 1957 में आज़ाद हो गया। 1963 में उसने सबा पहले का उत्तरी बोर्निया, सारावाक और सिंगापुर के साथ मिलकर मलेशियन फेडरेशन की स्थापना की, किंतु 1965 में सिंगापुर ने स्वयं को एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इंडोनेशिया में जापान के आत्मसमर्पण के शीघ्र बाद राष्ट्रवादियों ने इंडोनेशियाई गणतंत्र की घोषणा कर दी, लेकिन ब्रिटिश समर्थन से डच लोगों ने फिर उस पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी राष्ट्रवादियों के साथ लड़ाई छिड़ गई। युद्ध 1949 में समाप्त हुआ और उसी साल 27 दिसंबर को इंडोनेशिया स्वतंत्र हो गया। वियतनाम युद्ध के बारे में पहले उल्लेख किया जा चुका है, जिसके अंत में फ्रांस और संयुक्त राज्य को हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 30 अप्रैल 1975 को समाप्त हुआ, जबकि दक्षिण वियतनाम की संयुक्त राज्य समर्थित सरकार की राजधानी सैगोन को मुक्त करा लिया गया। 1976 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। सैगोन का नाम बदलकर वियतनामी लोगों के महान नेता हो ची मिन के नाम पर हो ची मिन नगर रख दिया गया, जिसने वियतनाम में स्वतंत्रता के आंदोलन का सूत्रपात किया था और 1969 में अपनी मृत्यु के होने तक उसका नेतृत्व करता रहा था। हिंद चीन इंडो चाइना में शामिल तीन देशों में से एक लाओस ने 1945 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन लाओस में पहले फ्रांसीसी और उसके बाद संयुक्त राज्य का हस्तक्षेप जारी रहा। लाओस में अमरीकी हस्तक्षेप 1973 में समाप्त हुआ। हिंद चीन के तीसरे देश कंबोडिया में भी जापानियों की पराजय के बाद फ्रांसीसी दोबारा लौट आए। फ्रांसीसी 1953 में उसे छोड़ दिया और कंबोडिया आज़ाद हो गया। 1970 में संयुक्त राज्य ने वहां एक कठपुतली सरकार कायम की और वियतनाम की लड़ाई का दायरा बढ़ाकर कंबोडिया तक ले आया। अमेरिका समर्थित सरकार को 1975 में उखाड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद कंबोडिया में एक अत्यधिक बार्बर सरकार ने शासन संभाला। इस सरकार का गठन कंबोडिया के खमेर रूस लाल खमेर नाम के एक साम्यवादी गुट ने किया था। उसका प्रधान पॉल पॉट था। उसने अपने ही देशवासियों के संहार की नीति अपनाई। अनुमान है कि इस सरकार ने 10 से लेकर 30 लाख कंबोडियाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बार्बर सरकार को 1979 में वियतनामी सेना की मदद से आपदस्थ कर दिया गया। कंबोडिया में संघर्ष कई वर्षों तक चला। यहाँ तीन प्रमुख राजनीतिक गुट कायम थे। पहला खमेर रुस का दल, दूसरा प्रिंस सिहानुक के नेतृत्व में संचालित गुट जिसकी सरकार को 1970 में संयुक्त राज्य की मदद से आपदस्थ कर दिया गया था, और तीसरा गुट वह था जिसने वियतनामी सैनिकों की सहायता से पॉल पॉट की सरकार को गिराने के बाद सत्ता संभाली थी। खमेर रूस ने देश के भीतर अपने सत्ताधीन प्रदेशों से तथा सीमा पार प्रदेशों से वियतनाम समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 1989 में वियतनामी सैनिकों को कंबोडिया से हटा लिया गया। 1991 में तीनों संघर्षरत गुटों को साथ बैठाया गया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1993 में कंबोडिया में चुनाव हुए और एक संविद सरकार कायम हुई, लेकिन खमेर रुस ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और लड़ाई की नीति जारी रखी। इसकी युद्धपरक गतिविधियां अधिक समय तक नहीं चली। इसके अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी दीनहीन जनता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। अरब देशों में राष्ट्रीय संघर्ष 20वीं शताब्दी के दौरान कुछ अरब देशों में अरब राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस के मेंडेट के लेबनान को फ्रांसीसियों ने औपचारिक रूप से एक अलग राष्ट्र बना दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेबनान के कर्ता धर्ता वीसी फ्रांस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें सत्ताच्युत करके लेबनान पर स्वतंत्र फ्रांस की सेना ने कब्जा कर लिया। नवंबर 1943 में लेबनान की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई, तथापि फ्रांसीसी सेनाएं 1946 तक वहां मौजूद रही। 1950 वाले दशक में लेबनान में काफ़ी उथल पुथल और राजनीतिक अस्थिरता हुई। विभिन्न लेबनानी गुटों के बीच हिंसक मुठभेड़ों और गृह युद्धों के अतिरिक्त यह देश इजराइल द्वारा बार बार किए जाने वाले हवाई हमलों से भी तबाह होता रहा। सीरिया में फ्रांसीसियों के खिलाफ जिन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, विद्रोह भड़क उठे। 17 अप्रैल 1946 को सीरिया स्वतंत्र हो गया और फ्रांसीसी सेना को वहां से हटा लिया गया। मिस्र में जनरल नजीब और कर्नल गमाल अब्दुल नासिर ने 1952 में सत्ता हथिया ली और राजशाही का पतन हो गया। नई सरकार ने स्वेज नहर के क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को हटाने की मांग की। जुलाई 1956 में ब्रिटिश सैनिकों को हटा लिया गया, लेकिन 1956 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने इजरायली सेना के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हें शीघ्र ही वहां से जाना पड़ा। नासिर अरब राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता बन गया। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक था। 1958 से 1961 तक सीरिया और मिस्र एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहे, जिसे संयुक्त अरब गणराज्य यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा जाने लगा। इराक में क्रांति हुई, जिसने ब्रिटेन समर्थक सरकार और राजशाही को उखाड़ फेंका। 19वीं शताब्दी के अंत में कुवैत ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। उसके तेल के विशाल स्रोतों पर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य की तेल कंपनियों का कब्जा था। 19 जून 1967 को कुवैत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र बन गया। उस्मानिया साम्राज्य की समाप्ति के बाद उत्तरी यमन स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, किंतु दक्षिण यमन में ब्रिटेन ने अपनी सत्ता कायम कर ली। अदन शहर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया और 1937 में वह एक अलग उपनिवेश बन गया। इसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित नए दक्षिणी अरब राष्ट्र का हिस्सा बना लिया गया। 1963 में दक्षिण यमन में अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह शुरू हो गए। नवंबर 1967 में दक्षिण यमन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और ब्रिटिश सैनिक वहां से चले गए। 1990 में दोनों यमनों का एकीकरण हो गया। ट्यूनीशिया और मोरक्को में फ्रांसीसी शासन 1956 में समाप्त हो गया। लीबिया पर इतालवी शासन कायम हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां जर्मनी और मित्र शक्तियों की सेनाओं के बीच कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। बाद में इस देश पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने कब्जा कर लिया। 24 दिसंबर 1951 को यह एक स्वतंत्र राजतंत्र बन गया। 1969 में इस राजतंत्र की सत्ता उखाड़ कर लीबिया को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अरब लीग की स्थापना हुई, जिसमें अरब राष्ट्र शामिल थे। अरब लीग ने कई वर्षों तक अरब देशों को एकजुट करके अरब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और विश्व राजनीति में अरब राष्ट्रों की स्वतंत्र भूमिका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी अरब राष्ट्रों के लिए फिलिस्तीन का प्रश्न अत्यधिक चिंता का विषय रहा, जहां अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की सहायता से इजराइल नामक राष्ट्र का निर्माण करके उसे समर्थन प्रदान किया गया था और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनाने दिया गया था। वहीं अरब राष्ट्रवाद इजराइल को अपने प्रदेश की एक साम्राज्यवादी चौकी मानते रहे। 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पलस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की स्थापना हुई, जो यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करता आया था। बाद में PLO ने एक फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना की घोषणा की, जिसके अनेक देशों ने मान्यता प्रदान की। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर बने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तभी स्थापित किया जा सकेगा जब इसराइल उसके उन देशों से हट जाएगा जिन पर इसराइल ने कब्जा जमा रखा है। 1990 के दशक में इसराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO के बीच ओस्लो समझौता हो जाने के बाद फिलिस्तीन की स्वतंत्रता स्थापित होने और क्षेत्र में शांति कायम होने की संभावनाओं में वृद्धि हुई थी। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO ने, जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संघर्ष चलाया था, 1994 में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो इजराइल के कब्जे में थे, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी का शासन चलाने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की और रामल्लाह में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। फिलिस्तीन शासन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा पर इजराइल का नियंत्रण बना रहा। इस प्रकार फिलिस्तीनी शासन को जो अधिकार प्राप्त हुए, वे मुख्य रूप से म्यूनिसिपल अधिकार थे। इस संदर्भ पर यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इन समझौतों से इजराइल के दक्षिण पंथी खुश नहीं थे। 1994 में इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन को यासर अराफात और इजराइल के तत्कालीन विदेश मंत्री सीमोन पेरेस के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए दिया गया और इस दिशा में ओस्लो समझौते को एक बड़ा कदम माना गया था। 1995 में एक इजरायली ने राबिन की हत्या कर दी। फिलिस्तीन प्रशासन को 5 वर्ष के लिए एक अंतरिम सत्ता के रूप में स्थापित किया गया था। इस दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए समय समय पर वार्ताएं आयोजित की जानी थी। फिलिस्तीन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण नेता यासर अराफात ने 1994 से लेकर 2004 में अपनी मृत्यु होने तक फिलिस्तीन की बागडोर संभाली। उनके स्थान पर महमूद अब्बास ने सत्ता ग्रहण की। तथापि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इसराइल ने वेस्ट बैंक के उस बड़े इलाके को खाली करने से इनकार कर दिया जहां इजरायली बस्तियां बसी हुई है। वास्तव में वेस्ट बैंक पर इजरायली बस्तियां लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फिलिस्तीनियों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। 2005 में यह गाजा पट्टी से हट गया, लेकिन जल और वायु मार्गों तथा अन्य सभी मार्गों पर इसका कब्जा होने के कारण इस प्रदेश पर अस्पष्ट रूप से इसराइल का कब्जा बना हुआ है। उन क्षेत्रों पर जिन पर फिलिस्तीन का औपचारिक कब्जा है, अक्सर बमों की बरसात होती रहती है, जिससे बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग मारे जाते हैं और फिलिस्तीन की इमारतों को क्षति पहुंचती है। जेरूसलेम की स्थिति पर इसराइल का रुख भी शांति समझौते से सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। 1988 में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्रों की घोषणा की गई। इसे 100 से अधिक देशों ने मान्यता प्रदान की थी, किंतु अभी तक यह केवल प्रतीकात्मक बना हुआ है। अब हमास नाम के एक नए संगठन का उदय होने से स्थिति में परिवर्तन आया है, जो इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गया है। यह संगठन फिलिस्तीनियों के बीच एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। इस समय गाजा पट्टी पर इसका कब्जा है। 15 वर्ष पहले ओस्लो समझौते ने जो उम्मीद जगाई थी, वे अब धूमिल हो गई है। इस समय अरबों के लिए फिलिस्तीन की स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अधिकांश देशों ने इसे समर्थन दिया है। पश्चिम एशिया के तनावों को दूर करने के लिए सबसे पहले इस समस्या का समाधान जरूरी ही है। फिलिस्तीनियों पर लगातार होने वाले अन्यायों के आधार पर इस्लामी आतंकवादी अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को सुसंगत ठहरा रहे हैं। संयुक्त राज्य ने इस प्रदेश में अपनी नीतियां कायम करने के लिए इसराइल का सहारा लिया है, जो संयुक्त राज्य का प्रबल समर्थक देश है। माना जाता है कि इसराइल के पास परमाणु अस्त्र मौजूद हैं और वह संयुक्त राज्य के साथ मिलकर ईरान को धमकी देता रहता है। इससे भी इस देश का तनाव एवं इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता ही जा रहा है। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संघर्ष। अल्जीरिया में स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। फ्रांसीसियों ने अल्जीरिया पर 1830 में कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्जीरिया पर अपना शासन कायम रखने के लिए फ्रांस को एक लंबी औपनिवेशिक लड़ाई में उलझना पड़ा। अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों के विपरीत अल्जीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेशी बहुत बड़ी संख्या में बस गए थे। 1960 में उनकी संख्या लगभग 10 लाख थी। उन्होंने अल्जीरिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और जब फ्रांस की जनता और सरकार इस समस्या को सही ढंग से निपटाने की इच्छुक थी, तब भी वे इस पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए कटिबद्ध थे। यहाँ की स्थिति दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण रोडेशिया के समान थी, जहाँ बसे गोरे उपनिवेशियों ने उनका प्रभुत्व समाप्त करने वाले किसी भी समझौते का लंबे समय तक विरोध किया। 1954 में अल्जीरिया के राष्ट्रवादी आंदोलन ने जन विद्रोह का आह्वान किया। शीघ्र ही राष्ट्रीय मुक्ति की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अल्जीरिया के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF ने अपनी एक अलग मुक्ति सेना खड़ी कर ली थी, जिसमें नियमित सशस्त्र सैनिकों के अतिरिक्त छापमार योद्धा भी शामिल थे। इस समय अल्जीरिया में फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने व्यापक नृशंसता और अत्याचार का दौर आरंभ किया। मोर्चे ने अपनी कामचलाऊ सरकार स्थापित कर ली, जिसे कई देशों ने मान्यता दे दी। 1958 में अल्जीरिया के फ्रांसीसी उपनिवेशियों तथा फ्रांसीसी सैनिकों ने फ्रांस की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप 14 स्वतंत्र 1946 से फ्रांसीसी सरकार को इसी नाम से जाना जाता था समाप्त हो गया। अब फ्रांस में जनरल डी गॉल ने सत्ता संभाली और एक नया संविधान लागू किया, जिसके आधार पर पांचवां गणतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांसीसी औपनिवेशियों और अल्जीरिया में स्थित फ्रांसीसी सेना को आशा थी कि नई सरकार अल्जीरिया में फ्रांसीसी शासन कायम करने के लिए उनके द्वारा चलाई जा रही उनकी लड़ाई को समर्थन देगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डी गॉल अल्जीरियाइयों के साथ समझौता करने के पक्ष में है, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया, जो नाकामयाब रहा। मार्च 1962 में डी गॉल सरकार ने मुक्ति मोर्चे के साथ वार्ता आरंभ की, जिसके बाद अल्जीरिया में लड़ाई बंद हो गई। अल्जीरिया को स्वतंत्र करने और अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेनाओं को पूरी तरह हटा लेने पर एक समझौता हुआ। अल्जीरिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर अप्रैल 1962 में फ्रांस में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें फ्रांसीसी जनता ने भारी बहुमत से अल्जीरिया की आज़ादी के पक्ष में फैसला दिया। अल्जीरिया में 1 जुलाई 1962 को आयोजित हुए एक ऐसे ही जनमत संग्रह में 99% जनता ने पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद 3 जुलाई 1962 को फ्रांस ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इस स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 1.5 लाख अल्जीरियाई फ्रांसीसियों के हाथों मारे गए।